শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি শ্রী গৌর ভক্তবৃন্দ, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। বলো শ্রী গুরুজি মহারাজ কি জয়, গুরু পরম্পরা কি জয়, অনন্ত অনন্ত কোটি বৈষ্ণববৃন্দ কি জয়, সপার্ষদ গৌরহরি কি জয়, গৌর নিত্যানন্দ প্রভু কি জয়, জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা সুদর্শন জীব কি জয়, ভক্তবিঘ্ন বিনাশনকার নৃসিংহদেব কি জয়, ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজ কি জয়, সর্বাভীষ্টপ্রতা গিরিরাজ গোবর্ধন জীব কি জয়, গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন জীব কি জয়, ব্রজমণ্ডল ধাম কি জয়, ব্রজবাসী ভক্তবৃন্দ কি জয়, ব্রজেশ্বরী মধেশ্বরী প্রণেশ্বরী শ্রীমতী রাধারণী কি জয়, ব্রজদেবী জ্ঞান কি জয়, রাধা দামোদর ব্রত কি জয়, কার্তিক ব্রত ঊর্জাব্রত নিয়ম সেবা দামোদর ব্রত কি জয়, ঊর্জেশ্বরী শ্রীমতী রাধারণী কি জয়, তদীয় পরিকর বৃন্দ কি জয়, নিত্যলীলা পরিষ্ঠ ভক্তিবান্ত স্বামী মহারাজ শুভ তিরুভাব তিথি মহামহোৎসব কি জয়, তদীয় সমাধিপীঠ কি জয়, সমবেত গৌরভক্ত বৃন্দ কি জয়, গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। আজ হাম লোক বৃন্দাবন ধাম মে দামোদর ব্রত কে উপলক্ষে মে সব উপস্থিত হে, তো ইসমে গুরুবর্গ কে পুণ্যতিথি আরাধনা তিথি আনে পর যদি উনকা আদর সম্মান নেই করতে তো উনকা কৃপা আশীর্বাদ ইয়া প্রসাদ কাহা সে মিল সকতা হয়। যদি বৈষ্ণবের গুণগান করলে জীবে ত্রাণ, যদি বৈষ্ণব কা গুণগান কিয়া নেই তো বলতে হ্যাঁ ও কঞ্জুস হে, হ্যাঁ ও কেসে কঞ্জুস হে, মক্ষি চুষ হে, দুনিয়া সে সব কুছ লুটতা হ্যায়, হ্যাঁ অপনা ইন্দ্রিয় তর্পণ করতা হ্যায়, কিন্তু কিছু কা গ্লোরিফাই নেই কর সকতা, কিছু কা গুণ কা বর্ণন নেই কর সকতা, অপনা গুণ কা বর্ণন শুনতেই উছলতে কুদ্দে ফুলে সমাতে নেই, কিন্তু ভগবত পরিকর কে গুণগান যদি নেই কীর্তন কর সকি তো জীবান ব্যক্তি ভগবত গুণ নামধ্যম চেতস ন স্মরতি তৎচরণার বিন্দম কৃষ্ণায়ন নমতি যৎসিরে কদাপি তা নানো অধম অসত বিষ্ণু অকৃত্য কৃত্যান। যম মহারাজ কে পাস উনকে দূতনে পুছা প্রভু কাহা যায়, পাপি কোন হে, কিসকো পকড় লে, কিসকো লায়, সমাজ মে তো আতা নেই কুছ, হ্যাঁ কিন্তু অজামিল কে পাশ গিয়া তো অজামিল তো ছুনেই নেই দিয়া, ও তো চার বড় তেজস্বী দূতা করকে মার পিট করকে আমার ভাগা দিয়া, অব কিসকো পকড়ে কোন হ্যাঁ, তব যম মহারাজ ধর্মরাজ নে বতলায়া জিনকে জিভা ভগবত গুণগান ভক্ত গুণগান কীর্তন কবি নেই কিয়া আর নেই করতা উসকো পকড়লা না, আর কিসকো জীবান ব্যক্তি ভগবত গুণামধ্যম চেতস্য ন স্মরতি তৎ চরণারবিন্দম, যিনকে চিত্ত ভগবানকে চরণ কি ভক্তকে হ্যাঁ চরণকে চিন্তন নেই করতা, হ্যাঁ উসকো পকড়কে লানা, আর কৃষ্ণায়ন নমতি যৎ শিরে কদাপি ভগবানকে চরণ কমল মে একবার বি স্বর নেই ঝুকায়া উসকো জরুর পকড় কে লানা, ও দণ্ডকে ভাগিদার হে, হ্যাঁ আর যে লোক ভগবানকে গুণগান কীর্তন করতে হ্যাঁ ভক্তকে সাথ উনকে লীলা কা কীর্তন করতে হ্যাঁ ও কেসে হ্যাঁ, ও হৃদ্রোগম আশু অপনিত অচিরণ ধীর, যে জন্মান জন্মান্তরকে ভবরোগ সে হ্যাঁ ছুটকারা নেই মিলতা, আসক্তি সে মোহ সে ছুটকারা নেই মিলতা, উনকো তো যাহা ভগবত ভক্তকে গুণগান শ্রবণ কীর্তন করনা শুরু কর দি ভগবান তো ভাগে ভাগে আ যায়গে আর উনকে পাশ সারে তীর্থ বিরাজমান হয়ে যায়গে, এসে যদি কই এসে পুণ্যতিথি আতে হ্যাঁ এসে তো রোজ দিনই ভক্তকে গুণগান কীর্তন করনা চাইয়ে, কিন্তু অদ্বৈতাচার্য প্রভু মহাপ্রভু সে কহতে হ্যাঁ আমারে গুরুজিকে আরাধনা তিথি হে অর্থাৎ পুণ্যতিথি হে পধারণে কা দিন হ্যাঁ তো মে আপকো নিমন্ত্রণ দেতা হুঁ आप आइए, नित्यानंद प्रभु को निमंत्रण दिया, सब भक्तों को निमंत्रण दिया। और महाप्रभु आए तो क्या देखा, हजारों ने लाखों भक्त लोग अपने श्रद्धा अनुजाई सामर्थ्य अनुजाई फूल माला चंदन और उपहार फल फूल जो जिससे होता है, यहाँ तक तो गंगा का जल मिट्टी लेकर के भी उपस्थित हो रहे हैं। महाप्रभु देख रहे हैं कितने घर भरे हुए हैं कपड़ों से, कितने घर मिठाइयों से भरे हैं, और ब्राह्मणों के लिए संतों के लिए कितना आसन बिछ गए हैं, कैसे गुरु का पूजा करते हैं, माधव मंदिरपुरी की पुण्यतिथि आने पर कैसे आराधना कर रहे हैं। तो महाप्रभु कहते हैं जो गुरु के चरणों की स्मरण करते हैं और गुरु के गुणगान सबको परिवेशन करते हैं वैष्णव के भक्तों के, उनके समान दानी दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जगत का तो ज्ञान है नहीं, और अपना जन्मदिन मनाएंगे हैं और किंतु भक्तों के आविर्भाव तिथि क्या मनाते हैं। कहते हैं वैष्णव जन्म भगवान है जन्मतिथि जमत तो पवित्र वैष्णव जन्मतिथि सेमत तो चरित्र, भगवान के आविर्भाव तिथि आने पर जैसे उल्लास और आनंद से जन्मयात्रा महोत्सव पालन करना चाहिए, ऐसे महाभगवत भगवत परिगणों के आविर्भाव तिथि तिरुभाव तिथि ऐसे उससे अधिक पुण्यतिथि है। यदि उनके कृपा प्रसाद लाभ करना है, भगवत कृपा लाभ करना है, तो अवश्यंभावी उनके गुणगान कीर्तन करना है, श्रवण करना है। नहीं कर सकते हैं और उसे सुनो हैं, उनके स्मरण करो, वही परम उपकार है और लाभदायी है। इसलिए सन 77 में जब हम लोग मथुरा में हैं तो शाम को गाड़ी पहुंची महाराज जी के पास, बीच बीच में भेजते थे इस्कॉन से कि महाराज जी को बुलाते थे, सुबह आते महाराज जी शाम तक रह के फिर जाते। स्वामी जी प्रभुपाद जी से बहुत घनिष्ठ संबंध, इससे बहुत बातचीत होता। तो आज गाड़ी पहुंची तो महाराज जी हम तीन चार जन को लेके यहाँ आए। स्वामी जी जाने के पहले कह दिया कि मेरे शरीर को कोई छुए नहीं, अब नारायण महाराज आएंगे वो मेरे को समाधिस्थ करेंगे और मेरा जो कुछ कार्य कर्म वही करेंगे। तो साल भर महाराज जी अंतिम समय में यहाँ ही थे वृंदावन में, उनका भजन कुटी है, पहले ऊपर रहते थे, फिर बाद में नीचे मंदिर के पीछे थोड़ा छोटा सा बागान बगीचा और उसमें महाराज जी रहते थे। तो हम लोग जब आते थे महाराज जी से विभिन्न वार्तालाप होती थी। तो अब महाराज जी ने जाने के पहले ही कह के गए, तो हम लोग आए, रात भर कीर्तन चला, सुबह रथ यात्रा निकली, उनकी शोभा यात्रा निकली, सात देवालय में गए, आकर के सब लोगों ने बहुत पूजा सम्मान आरती उतारे, फिर आके यमुना जी समस्त तीर्थों के जल आया, उनका अभिषेक हुआ, नए वस्त्र आदि धारण कराया, आसन बिछाया, भोगराग हुआ, हम लोगों ने आँखों से देखा कैसे सम्मान और आदर होता है भगवत परिकरों की। किसी एक समय भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज नवद्वीप में विराजमान हैं, तो गुरु भाई होने के नाते स्वामी महाराज जी की और श्रीधर महाराज जी की बहुत मित्रता घनिष्ठता थी। तो दोनों बैठे और वो कह रहे श्रीधर महाराज, बोले देखो महाराज, आपके अंदर में नित्यानंद शक्ति समाया हुआ है, इसके कारण आप सक्ताभिष अवतार है, आपने सारे जगत को नित्यानंद प्रदान किया, जड़ानंद नहीं, मोक्षानंद नहीं, ज्ञानानंद नहीं, भोगानंद नहीं, नित्यानंद परमानंद आपने दे करके सबको परिपूर्ण कर दिया। आज अहो भाग्य है आप जैसे गुरु भाई हमारे पास भी दर्शन देते हैं, आते हैं, हमें बुलाते हैं, धन्य हैं हम भी। हम तो साक्षात नित्यानंद रूप से मिल नहीं सकते, किंतु आप जैसे महाभागवत और भगवत परिकरों के साथ मिल करके आज मेरा भी जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि जब स्वामी जी महाराज कलकत्ता में विराजमान थे तो प्रभुपाद जी के जितने परिकर थे गुरु भाई लोग उनके आश्रम में पुण्य जाया करते थे। विशेषकर भक्तिरत्न श्रीधर महाराज का उनके घर के साथ इतना संबंध था, उनके माता पिता बच्चे सबके साथ। तो एक दिन वो कह रहे हैं स्वामी जी को, बोले गुरु भाई, आपको गुरु भाई कहने में अभी मुझे संकोच लगता है, कहाँ आप भगवान के सेवक हैं, सर्वत्र सबको भगवान के सेवा में उपस्थित कर रहे हैं, हमारा अहोभाग्य है, हमारा भी ऐसा कोई दिन आएगा कि आपके साथ हम भी भगवान के सेवा में हैं अपने को समर्पण कर सकेंगे। दैन्य करके वैष्णव के दैन्य ही भूषण है, तो वो भी कम नहीं थे प्रभुपाद जी के परिकर और प्रभुपाद जी के सन्यासी और सबसे श्रेष्ठ पद में विराजमान थे, और गोलेमठ उनको कहते थे धन कुबेर, किंतु प्रभुपाद जी ने नाम दिया था भक्ति रक्षक, भक्ति की रक्षा करने के लिए इतना योग्य गोले संप्रदाय में कमी थी। तो फिर भी कितना दैन्य था, तो आलोचना कर रहे हैं कि तब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, देखो मेरे ऊपर भगवत कृपा, गुरु कृपा, वैष्णव कृपा मेरे को मालूम नहीं, किंतु एक चीज मालूम है, उद्धारन दत्त ठाकुर नित्यानंद प्रभु अति निकट के थे और बड़े कृपा पात्र थे। उद्धारन दत्त ठाकुर सुनहार थे और पूरे गोष्ठियों में प्रधान थे, किंतु नित्यानंद प्रभु जो प्रचार करने आए सबसे पहले उद्धारन दत्त ठाकुर को ही अपनाया, और उद्धारन दत्त ठाकुर ने कैसे नित्यानंद प्रभु की सेवा की, समस्त गोष्ठियों को निमंत्रण दी, समस्त विश्व को निमंत्रण दी, देकर के नित्यानंद प्रभु को सोने का सिंहासन में बैठाया और उनके अभिषेक किया करके सोने से हीरा जरूरत से उनके सारे शरीर को अंगों को आभूषण से भूषित कर दी। तो बोले ऐसा क्यों, कहते हैं द्वापर युग में बलराम बलदेव प्रभु आए, तो बलदेव प्रभु हल मुसलधारी और कृष्ण के साथ रहते थे, द्वारका में गए तो हैं कृष्ण बलदेव प्रभु को इतना सम्मान देते, आदर देते, पूजा करते हैं बड़े भाई के नाते हैं। अब इससे महाप्रभु ने संन्यास ले ली, नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया हमारे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, जाओ प्रचार करो, किसलिए आए जगत में, सब जगत का उद्धार करना है, सबको भगवत प्रेम प्रदान करना है, मैं तो सन्यासी हूँ, परिव्रजक हूँ, मैं किसी के साथ नहीं, मैं अकेला प्रचार करूँगा। महाप्रभु अकेले साउथ इंडिया चले गए, पश्चिम भारत इधर आ गए, हाँ नित्यानंद प्रभु को प्रचार करने के लिए भेज दिया। तो नित्यानंद प्रभु बोले मैं तो जाऊँगा, किंतु द्वादश गोपाल, चौसठ महंत, अष्ट कविराज, सरल गोस्वामी हैं सब लोग हमारे साथ है, तो आपने किसी को स्वीकार नहीं की, ठीक है मैं सबको लेकर प्रचार करूँगा। जब उद्धारन दत्त ठाकुर के सिपाट आदि सप्तग्राम वहाँ तक आए और देखा कि उद्धारन दत्त ठाकुर पहले से ही राधा कृष्ण की ये लोग उपासना करते थे, जब नित्यानंद प्रभु से मिले, नित्यानंद प्रभु ने कैसे लाया, पानीहाटी में 3 महीना तक गोविंद घोष, वासु घोष, माधव घोष और महाप्रभु के जितना कीर्तनिया, 3 महीना रात दिन 24 घंटा कीर्तन बंद नहीं चलता रहा, भोजन नहीं, पान नहीं, वो कीर्तन के रफ शब्द कहाँ तक पहुँचा, वो गोलोक वृंदावन तक खिला दिया, जो जहाँ भक्त लोग थे सबरे भागे भागे आए, कोई नहीं रह सके, कीर्तन में इतना शक्ति है, जब तक कीर्तन नहीं करते बोलते हैं कलयुग केवल और नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उत्तर ही पारा, हाँ तुलसीदास जी कहते हैं, किंतु भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कले दोष निधे राजन अस्ति में जे को महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम रजत, जब कृष्ण कीर्तन करने लग जाएंगे तो जितने भगवत परिकर मुक्त पार्षद सब उतर करके आएंगे। जैसे नरेश हमारे नरोत्तम ठाकुर ने कीर्तन शुरू की, पंचतत्व आ गए, वो कृष्ण ब्रज के परिकरों के साथ आविर्भूत हो गए, कोई नहीं रह सके। ऐसे ही जब प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जी ने ए শতকড়োর 100 করোড় নাম যজ্ঞ শুরু কর দিয়া তো উস সময় সারে মহাপ্রভু সে লেগে সব পরিকার উতর আয়ে তো যাহা নাম কীর্তন হোগা ওই ভগত ধাম হ্যাঁ তীর্থ হ্যাঁ ওই সব কুছ বিরাজমান হ্যাঁ আর যাহা কীর্তন নেই ও হ্যাঁ নরক হ্যাঁ শমশান হ্যাঁ ইয়ে মেরা কেনে কা নেই সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজ কহতে হ্যাঁ কহতে দেখো যাহা পর ভগত গুণগান কীর্তন নেই হতা ও স্থান অন্ধকার হ্যাঁ আর কলিকা স্থান হ্যাঁ সবসে বড় নরক হ্যাঁ আর উহা সবসে বড় দুঃখ উহাই বিরাজমান হিসেবে নিত্যানন্দ প্রভু নে দেখা হ্যাঁ দিস কলিযুগ হ্যাঁ কলি মহারাজ কে অন্দর এক সদ্গুণ হ্যাঁ কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য যদি কই কৃষ্ণ কীর্তন করতা তো উনকে পাশ ও পৌঁছতা নেই উনকো সরাহনা করতে সম্মান করতে আদর করতে উনকি পূজা করতে আরাধনা করতে সব তর সে মদত করতে কলি মহারাজ কহতে মেরে পাশ মে কুছ দেনে লাইক নেই পরীক্ষিত মহারাজ নে মুঝে 4-5 চিজ দিয়া ক্যা দিয়া দূতম পানম স্ত্রীম সুনা যত্র অধর্ম চতুর্বিধ 4 চিজ অধর্ম দিয়া এক চিজ মুঝে অর দিয়া পুনঃশ্রী যাচমানায় যাতনুপম অদত প্রভু তদ রজ বৈরঞ্চ পঞ্চমম 5 চিজ স্বর্ণ তো সোনে দিয়া তো উদ্ধান দত্ত ঠাকুর কহতে ই যে সোনা কলি মহারাজি কো পরীক্ষিত মহারাজ নে দিয়া মানে আজ আপকো সমর্পণ করতা হুম কেউ মে সুনার হুম সুনার এসে হতে হ্যাঁ ঝুট বলনে মে গলত কাম করলে ও হিচকতে নেই ধর্ম ভগবান পাপ ভি বনায় পুণ্য ভি বনায় তো মুঝে ক্যা মতলব হ্যাঁ দোনো চিজ ভগবান কা বনায়া হুয়া হ্যায় তো পাপ ভি করুঙ্গা তো ভগবান জানে পুণ্য করুঙ্গা তো ভগবান জানে তো মেরে কো পাপ করনে মে ডর ক্যা হ্যায় কিন্তু কলি মহারাজ ক্যা কহতে হ্যাঁ যদি কই হরিনাম কীর্তন করতা হ্যায় তো মেয়ে 5 চিজ উনকে পাশ সমর্পণ কর দুঙ্গা আর মে সেবা করুঙ্গা মে উসকো কবি ভি বাধা নেই দুঙ্গা আর পরিশান নেই করুঙ্গা তো নিত্যানন্দ প্রভু নে এ কৃষ্ণ কীর্তন গান নর্তন পড়ু মহাপ্রভুর কীর্তন নিত্য গীত মহাপ্রভু আদেশ দিয়া ক্যা মহাপ্রভু কীর্তন নিত্য গীত আর কৃষ্ণ কীর্তন গান নর্তন পড়ু কৃষ্ণ কীর্তন করো সদা বাস বন্ধ নেই হোনা চাইয়ে নিত্যানন্দ শুরু কর দি আর ভক্ত লোক ইতনে হ্যাঁ হাজারো নে লাখ হো কড়োর সব কীর্তন কর রে কই ছত কে উপর কই পেড় কে উপর কই পানি কে অন্দর হ্যাঁ ওন খানা পিনা কুছ বচ্চে ছোটে ছোটে এসা শক্তি সঞ্চার কর দি কীর্তন কে সাথ সাথ ও পেড় কো উখাড় করকে বন্দর কি তরহ হনুমান কি তরহ ফেঁক রে আর নাচ রে আর 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা তো খড়ে হ্যাঁ তো খড়ে হ্যাঁ হ্যাঁ अभाव में आविष्ट हुआ ऐसे नित्यानंद प्रभु ने अपने को प्रकाश किया तो कहते हैं स्वामी जी महाराज कहते देखो ये उद्धान दत्त ठाकुर के डायनेस्टी में जनरेशन में मेरे को आने का सौभाग्य हुआ ये जो कुछ कृपा है उद्धान दत्त ठाकुर की कृपा है हैं और क्या किया था जब प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर से मिले उनके घर में जब आश्रम में विराजमान थे तो बचपन से ही घर में राधा गोविंद का सेवा था माता पिता वैष्णव थे तो ये छोटे छोटे बच्चों को लेके रथ यात्रा निकाल ली छोटे से रथ बनाया सड़कों में रथ निकाल दी तो बोलते थे देखो मैं बड़ा होऊंगा ना इतना बड़ा रथ करूंगा एक जगह नहीं सारा विश्व में करूंगा तो उसके पिताजी बोलते पढ़ लिखे लो बड़े बनो तब तो बोले बड़े बनने का क्या है छोटे बनने का क्या है भगवान के लिए तो सभी सेवक है जो भगवान की सेवा नहीं करते वही छोटा है तो मैं जगन्नाथ जी को लेकर सब जगह जाऊँगा हैं बोले पहले कुछ ज्ञान तो लाभ करो तो बोले क्या ज्ञान लाभ करना है गीता जी पढ़ लो बस गीता पढ़ने लगे कि नहीं संस्कृत का श्लोक उन्होंने बंगाली में पोएट्री पद्य लिख दिया गीता का गान हाँ वो बचपन की बात है जबकि पिताजी ने बोला गीता पढ़ लो बोले पिताजी लो भाई मैं पढ़ लिया और मैं पद्य के आकार में मैं अब लिख देता हूँ पूरा गीता का एज इट इज अर्थ पूरा लिख के और इतना सुंदर गान संगीत तैयार कर दी और सब बच्चों को पढ़ाने लग गए, सिखाने लग गए, सब लोग बैठ करके हैं बस गीता का गान कीर्तन करते हैं, फिर महामंत्र कीर्तन करते हैं। तो कोड़ियों मठ जब कलकत्ता में प्रभुपाद जी प्रचार चला तो प्रभुपाद जी के परिकर लोग भिक्षा के लिए प्रचार के लिए जाते थे, तो इनके घर में जाके पहुँच गए जन्माष्टमी के लिए निमंत्रण देने कि हमारे जन्माष्टमी है कोलकाता बाग बाजार में उल्टा डिंग जंक्शन रोड में, आप लोग आइए और कुछ चंदा दे दो। तो बोले हमारे घर में भी जन्माष्टमी होगा, आप सब आइए हमारे घर में, हैं हमारे यहाँ भी बहुत सुंदर जन्माष्टमी उत्सव होता है। तो बोले ठीक है, यहाँ तो आप लोग गृहस्थी लोग हैं, वहाँ साधु लोग है, साधु लोग सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरण में समर्पित है ना, तो भगवान उनको ज़्यादा ही अपना पुत्र की तरफ मानते हैं। गृहस्थी तो अपनी गृहस्थी में समाये हुए हैं और त्यागी लोग तो भगवान में समाये हुए हैं। तो इनको समझाया तो उनके पिताजी बोलते हैं ठीक है आप लोग कुछ चंदा ले जाओ हैं और प्रसाद के लिए यहाँ आ जाना है, नंदोत्सव हम यहाँ करेंगे क्योंकि हमारे बेटे का जन्मदिन है, स्वामी जी प्रभुपाद जी का जन्मदिन नंदोत्सव के दिन है। बोले मेरे बेटे का जन्मदिन है, हम नंदोत्सव मनाएंगे, कृष्ण का भी उत्सव हमारे बेटे का भी उत्सव मनाएंगे, बहुत सुंदर उत्सव मनाएंगे, आप सब आओ। तो कुछ कुछ प्रभुपाद जी के शिष्य उनमें उन लोगों ने बोला ठीक है कल हम आएंगे। तो कुछ लोग आए मंदिर से, कुछ प्रसाद लेके आए और वहाँ भी कीर्तन चला, कथा चला, उन लोगों ने प्रभुपाद जी की महिमा खूब सुनाया और महाप्रभु की महिमा नित्यानंद परिकर सबकी महिमा कीर्तन करने लगे। तब हैं स्वामी जी महाराज का पहले नाम था अभय चरण दे, तो वो बोले ठीक है कभी आपके मठ में जाऊंगा, मैं तो अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैं जाऊंगा। तो जब आए मिलने के लिए उसी समय पहले बार में प्रभुपाद जी ने पूछा भाई कुछ कहाँ पढ़ते हो, तो कोलकाता में सबसे बड़ा कॉलेज है हैं अंग्रेजों ने बनवाया था, तो उस कॉलेज में मैं स्नातक हूँ अर्थात छात्र हूँ। अच्छा तो आप लोग तो प्रभुपाद जी से बातचीत की, प्रभुपाद जी बोले हम जो कुछ भाषण देते हैं उसको आप समझते हैं कि नहीं, ठीक है मैं कल बताऊंगा। उन्हें जो एज इट इज भाषण था अंग्रेजी में अनुवाद कर लिख करके प्रभुपाद जी के लिए दे दिया। प्रभुपाद जी पढ़े, पढ़ करके बोले जाओ। उस समय प्रणवानंद ब्रह्मचारी प्रेस का काम करते थे जो बाद में भक्ति प्रमोद पुरी महाराज हुए, तो बोले जाओ प्रणवानंद को दे दो ये छपेंगे, क्योंकि उस समय दैनिक नदिया प्रकाश प्रतिदिन हमारा मैगजीन निकलता था और 15 दिन में साप्ताहिक, 1 महीना में, और भारत में कोई भाषा नहीं कि उस भाषा में नहीं छपता। हिंदी में भागवत पत्रिका, उड़िया में परमार्थी, असमिया और मराठी, और उधर तेलुगु, उधर अंग्रेजी हारमोनिस्ट, बंगाली में गोड़िया, सब भाषा में, इतने भक्त शिष्य सभी सब भाषाओं में, आप लोग सब भाषा जानते थे, 18 भाषा जानते थे। और ऐसे ही तो बोले आपका अंग्रेजी बहुत सुंदर है, अब आप ऐसा करो आपको प्रचार करना है और कथा सुनना है और प्रचार करना है। प्रभुपाद ने वो कह दिया। अब धीरे धीरे समय आया, प्रभुपाद जी ने उनको हरिनाम दीक्षा दोनों ही दे दी। देते समय गुरु अपने शिष्यों को हैं अपने कैसे भगवत सेवा करना चाहिए उसके तरीका भी बताते हैं। ये नहीं कि हैं फोन में मंत्र ले ली, गुरु से मतलब नहीं, गुरु के पास गया नहीं, गुरु की सेवा की नहीं और गुरु से आदेश निर्देश दिया नहीं, एक दिन में दीक्षा नहीं होता। स्कूल में जाने से छात्र नहीं बन जाता, प्राइमरी स्कूल के भी छात्र छात्र है और एम ए पी एच डी के भी छात्र ही है, किंतु एम ए पी एच डी पर तक तो 20 साल 25 साल उनको स्कूल कॉलेज जाना पड़ा। तो ऐसे एक दिन मंत्र दीक्षा ले आया, गुरु से कोई मतलब नहीं तो क्या सीखेगा, ऐसे दीक्षा गुरु है तो शिक्षा गुरु भी चाहिए। तो स्वामी जी महाराज जाते थे अभय बाबू गुरु भाई से बड़े प्रीति था और सब लोगों से आलोचनाएं करते थे और सब दिन कथा सुनना संभव नहीं होता तो मैगजीन पढ़ लेते थे। प्रभुपाद जी ने बतलाया, वो बोले मैं तो अभी मेडिसिन का फार्मेसिस्ट अर्थात केमिकल का फैक्ट्री कर खोल दी। अब इतना टाइम नहीं होगा कि कब हरिनाम करेंगे, मंत्र जप करेंगे, कब मैं पूजा पाठ करूँगा। तो देखो, तन से मन श्रेष्ठ है। तन से सब कुछ नहीं होता है तो मन से कर लिया करो। मानसिक सेवा भगवान की सबसे श्रेष्ठ बतलाया गया। शरीर को लेकर घसीट कर कहीं ले जा सकता है, मन यदि नहीं गया तो। और मन को यदि पहले ही पहुँचा दिया गुरु के पास, भगवान के पास, तो अलंकृत हो जाएगा, शोभायमान हो जाएगा, उसके ऊपर और कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रभाव माया का नहीं पड़ेगा। तो तुम मानसी सेवा गुरु की, भगवान की करना। तो स्वामी जी महाराज बहुत सालों बाद इन बातों को ये वृंदावन में सन 75 में हैं अपने भक्तों से, शिष्यों से कह रहे हैं। देखो, गुरु जी ने उस दिन बोला, उस दिन से मैं सभी वैष्णव को प्रणाम करता, गुरु को प्रणाम करता, चंदन माला पहनाता, भगवान के अर्चन करता मन ही मन, और भगवान के भोगराग लगाता हैं, क्यों महाप्रभु ने आदेश दिया था हैं, क्या निरंतर ब्रजे मान राधा कृष्ण से मानस करीबे कृष्णनाम अमानी मानद या कृष्णनाम सदा लभे ब्रजे राधा कृष्ण से मानस करीबे। अमानी मानद होकर कृष्णनाम ग्रहण करना है और ब्रज में राधा कृष्ण का मानसिक सेवा करना है। तो प्रभुपाद जी ने बोला, वो करते रहे। बाद में प्रभुपाद जी ने बोला कि देखो भाई, ये भारतवर्ष तक सीमित नहीं, महाप्रभु का आदेश है, समस्त देश विदेशों में जाकर के भी प्रचार करना है। और प्रभुपाद जी ने उस समय दीक्षा के समय उनका उपाधि दे दी भक्ति वेदांत। ये नहीं कि संन्यास के बाद ही भक्ति वेदांत मिला है, प्रभुपाद जी ने पहले ही भक्ति वेदांत उपाधि दे दी हैं और आदेश दे दिया। अब गुरु का आदेश प्राप्त कर ली, किंतु उसको कैसे पालन करना है, साधन करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे साधन की, कितने सालों तक, करीब 50 साल तक हैं सब गुरु भाई आते थे। जैसे इलाहाबाद में प्रभुपाद खुद आए, इसके बाद भक्ति बिरंग केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति रक्त श्रीधर महाराज, भक्ति केवल ओल्लोई महाराज, उनके मंदिर बने तो उनका इलाहाबाद में उनका आश्रम था, वहाँ पहुँचते थे। गुरु भाइयों से एक तो सम्मान करना, आदर करना, सेवा करना, और उनसे हरिकथा सुनना, हरिकथा का आदान प्रदान करना। किंतु उनका क्या था, वो शुरू से ही मैगजीन में आर्टिकल देते थे। देवानंद गोड़ी मठ में जब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने मंदिर स्थापन किया और मैगजीन चालू कर दी प्रभुपाद जी के बाद, तो उनका बैक टू गॉड एंड बैक टू होम, तो बैक टू गॉड हेड उनका आर्टिकल का नाम था। वो हर महीना पत्रिका में आर्टिकल देते थे और वहाँ से वो गोड़ीबंध समिति के संपादक भी था, एडिटर हैं, तो वहाँ संबंध था गुरु भाई से। जब भक्ति विज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने सबसे पहले गोड़ी वेदांत समिति स्थापन की, तब चार जने को लेके, अभय बाबू, नारायण चक्रवर्ती दोनों गृहस्थी और मेरे गुरु महाराज और परम गुरु महाराज, ये चार जने मिल करके गौड़ी वेदांत समिति कोलकाता में बोसपाड़ा लेन में पहले स्थापन की। वहाँ से प्रचार चला। जब साईं महाराज अभय बाबू मथुरा में आए, आकर के विश्राम घाट में एक रूम रेंट ले लिया, लेकर 6 रुपया उस समय लेकर के वहाँ रहते, और कुछ मेडिसिन सप्लाई करने आए। वो मेडिसिन का बड़े पक्के थे सब, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ऐसे ही किया हाँ, तो अब वो मेडिसिन बनाते, तो यहाँ पर एजेंसी को लेकर आए देने के लिए। और मठ में बोला ब्रह्मचारियों को, तुम भी सप्लाई करो तो हम मठ के लिए 40% दे देंगे। तो परम गुरु महाराज बोले हैं, केशव गोस्वामी महाराज, अभय बाबू को पकड़ करके मंदिर लाओ, दावे बेचने की जरूरत नहीं, बहुत कर लिया, अब नहीं, अब तो मठवास करेंगे और हरिकथा सुनाएंगे, हरिकथा कीर्तन करेंगे, प्रचार करेंगे हैं, अब जरूरत नहीं है। तो विश्राम घाट जाकर ब्रह्मचारियों ने उनका घर, उनका जो रेंट रूम था सब सामान उठा करके मठ में लाए, एक कमरा दे दिया, अब आप बाहर नहीं जाएंगे, ये हो रही कहता है यहीं कीर्तन करेंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, मेडिसिन फेडिसिन कुछ नहीं चाहिए, बहुत हो गया। तो रह गए, उस समय उनके गुरु भाई एक थे सनातन प्रभु, उनका उम्र हो गया था 92। बोलते गुरु भाई आप दोनों जन संन्यास लेंगे। बोलते हैं बुढ़ापा में संन्यास लेके गर्म पानी के लिए किसके पास जाएंगे, किसी बोलेंगे भाई ठंडा दिन है थोड़ा गर्म पानी दो, ये कपड़ा धोना है, खाना बनाना है, भोग लगाना है, इतना हमारे बस की नहीं है, मंदिर में रहेंगे भजन करेंगे। परम गुरु महाराज क्या बोलते हैं, नहीं भाई गुरु भाई ये नहीं चलेगा, रूपा जी का आदेश है, वो आदेश को पालन करना है, अभी पूरा छोड़ के संन्यास लेना है और लेके प्रचार करना है। बोले ये उम्र में अभी प्रचार क्या करें, कहाँ कहाँ जाएंगे। बोले नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर सब लोग उनको अनुरोध करने लगे, तब केशव जी गोड़ीमठ में फिर उनका संन्यास हुआ। गुरु भाई थे सनातन प्रभु, तो उनका नाम हुआ मुनि महाराज, इनका नाम हुआ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। संन्यास के बाद कुछ दिन बाद परम गुरुनाथ जी बोला अब तो प्रचार में चलना है। तो मैं यही तो डरता था कि संन्यास ले लिया मठ में बैठने देंगे नहीं, चलो बाहर चलो। तो सबसे पहले आगरा गए, सनातन धर्म सभा में भाषण दिया, लोग इतना आकृष्ट हुए, इतना उनका स्मूथ भाषण था, ओ सारे आगरा हिल गया, किनारी बाजार में से लेकर के सदर बाजार बेलनगंज, कोई भी ऐसा गली नहीं कि उनके भाषण में नहीं आया। गए थे 3 दिन के लिए, उनको 1 महीना रख लिया, इसके बाद बोला अब यहाँ नहीं। फिर ग्वालियर होके भिंड होके एटा होके झांसी पहुँच गए, झांसी की रानी ने पूरा मंदिर महल सब दे दिया, बोले आप स्वामी जी यहीं रहेंगे, अब यहाँ एक कथा कीर्तन करेंगे, हम लोग सुनेंगे और प्रचार करेंगे। फिर वहाँ पर उन्होंने देखा राधा कृष्ण का मंदिर है, चैतन्य महाप्रभु का मूर्ति प्रकाश किया, वहाँ प्रचार करने लगे। बहुत दिन वहाँ रहे किंतु सेवक नहीं है, और मठ में बोलते हैं सेवक के लिए, आजकल के कलयुग के सेवक है, हैं उनको चाहिए सब तरह के सुजोग, एसी भी चाहिए, और उनको उनके सेवक चाहिए 2-4, 10-20 एक जने के, नहीं तो सेवक को सेवक की सेवक बनो तो कोई रह भी जाए, जब तक तो सेवक की सेवा नहीं करेंगे ना। गुरु बनना आजकल कलयुग में बड़ा कठिन काम है, पहले गुरु सेवक की सेवा करेगा, पूजा करेगा, आरती उतारेगा, तो सेवक बोलेगा ये सदगुरु है, नहीं तो कोई गुरु है ही नहीं। तो देखा महाराज हमारे परम गुरु जी ने भक्त नारायण गोस्वामी महाराज जी ने 2-4 सेवक दे दिया, किंतु बात सुनेगा है? और महाराज जी तो कथा कीर्तन में रहते, ये मनमानी कुछ करते, कीर्तन में जाएगा नहीं, सोता रहेगा, कभी आरती अर्चन करेगा नहीं, कभी पूजा करेगा नहीं, बड़ा विचित्र। स्वामी महाराज बोलते कैसे सेवक है ये लोग हैं, हम इतने उम्र में भी हैं इतना एक्टिव, अरे ये लोग नए नए युवक है। तो फिर से भाग गए, तो महाराज जी बड़े दुखी हो गए। इसके बाद महाराज जी ने दिल्ली पहुंचा, कुछ समय दिल्ली रहे, फिर महाराज सीधा बॉम्बे पहुंच गए। बॉम्बे में जाकर के कुछ दिन वहाँ हरिकथा कीर्तन की, इसके बाद महाराज जी सीधा आ गए वृंदावन, बोले मेरे को चुपचाप भजन करना है, हैं और मेरे को ग्रंथ प्रकाश करना है। वहाँ वृंदावन आकर के चैतन्य चरितामृत श्रीमद भागवतम सबका अनुवाद करना शुरू कर दी। राधा दामोदर मंदिर आज से चहल पहल है ऐसा नहीं था, हम लोगों ने खुद देखा 50 साल पहले क्या था, जंगल और मंदिर बीच में है, कुछ नहीं चाहता, जंगल है। कभी पूजा 10 बजे आता मंदिर खोलता, घंटा हिलाता चला जाता बंद करके, कोई नहीं आता, केवल स्वामी जी महाराज अकेले 2 कमरा ले लिया, वो भी 6 रुपया किराया वहाँ रहते। तो हमारे मथुरा से महाराज जी आते, कभी आटा वाटा ले आया, रोटी बनाया, वो बेल स्वामी जी महाराज बेल देते, वो सेक लेते, और उनके पास एक स्टोव था, आजकल जनता स्टोव ये मिलता नहीं, मतलब ऐसे है लांच बॉक्स टिफिन बॉक्स जैसे, तो उसके नीचे एक लकड़ी कोयला डाल देते, उसके ऊपर में पानी में चावल डाल देते, उसके ऊपर में सब्जी या दाल डाल देते, ऐसे चार खान का होता, नीचे कोयला डाल दिया, कोयला जला के बंद कर दिया, खान डाल दिया बंद करके रख दिया, और वो अनुवाद करते लिखते और वो अपने आप कोयला ख़त्म, रसोई ख़त्म, बस खोलते भोग लगाते राधा दामोदर को प्रसाद पाते। जब चैतन्य चरितमृत कंप्लीट हो गया, श्रीमद् भगवद गीता कंप्लीट हो गया और श्रीमद् भगवत का दशम स्कंध तक आ गया, तब महाराज जी करीब करीब सब समय आते, तो क्या रूप गोस्वामी प्रसन्न हो गए, जीव गोस्वामी प्रसन्न हो गए, कविराज गोस्वामी तीनों का समाधि हुआ ही है, सब प्रसन्न हो गए। क्या बोले, अब जब चैतन्य चरितमृत पूरा हो गया, कविराज गोस्वामी के चैतन्य चरितमृत होने के बाद, लिखने के बाद नरोत्तम सिवानंद श्रीनिवास प्रभु ने जीव गोस्वामी के आदेश से सर्वत्र प्रचार किया भारतवर्ष में, किंतु पाश्चात्य देशों में नहीं पहुंचा। और इन लोग का अब तक देखिए 50-60 साल साधन किया, अब इन लोग प्रसन्न हो गए, अब आदेश हो गया, अब जाओ प्रचार करो, जैसे जीव गोस्वामी ने आदेश दिया था नरोत्तम सिवानंद श्रीनिवास को, जाओ प्रचार करो। अब क्योंकि बिना शक्ति के वो प्रचार नहीं हो सकता। एक लिखते हैं चैतन्य चरितमृत में, कलियुगे युगधर्म नाम संकीर्तनम, कृष्ण शक्ति बिना तहा नहे प्रवर्तन। कलियुगे युगधर्म नाम संकीर्तन है, किंतु यदि कृष्ण की शक्ति किसी के पास नहीं है तो नाम प्रचार कर भी नहीं सकता। ऐसे कृष्ण शक्ति चाहिए। कृष्ण शक्ति कौन है? राधा रानी, स्वरूप शक्ति। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं है तब तक आप कृष्ण नाम का प्रचार नहीं कर सकते, कोई सुनेगा ही नहीं। आप कीर्तन करोगे तो सुंदर का कीर्तन होगा, चिक 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 हो जाएगा, और लड़ाई झगड़ा होगा, दंगा मारपीट होगा, कोई पीछे पड़ जाएगा, नहीं होगा। इससे वृंदावन आए ना, बस जीव गोस्वामी जो भगवत राधा रानी के परिकर कविराज गोस्वामी हैं, ये सब कस्तूरी मंजरी, कोई विलास मंजरी, कोई रूप मंजरी, इतना प्रसन्न, वाह चैतन्य चरितमृत का प्रकाशन हो गया। गीता का कैसे गीता, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, ऐसा भी नहीं, एज इट इज आज तक किसने कर भी नहीं सका, बोल भी नहीं सका, प्रकाशन नहीं हुआ। जब भगवत हो गया, बस दशम तक तो कृष्ण लीला तक तो हो गया, बस आदेश हो गया, अब चलो अब प्रचार करना है। जब फिर बॉम्बे गए, बड़े मुश्किल से टिकट कर दिया माताजी ने, फिर विदेश गया हैं, और पार्क में बैठ करके वही न्यूयॉर्क में हैं एक करताल लेकर के अलमजीरा कीर्तन करते थे। तो हिप्पी लोग दारू पी के पार्क में हैं मस्ती करते, वो लोग ने बस देखा कि कीर्तन हो रहा है तो भी आके कीर्तन में बैठ गए, नाचने लग गए और थाली गिलास बजाने लग गए हैं, उनके पास तो कुछ है नहीं हैं। तो ऐसे करते करते एक दिन की बात है, झुकी झोपड़ी में जन्माष्टमी आ गया, तो दीवार में खड़िया से एक कृष्ण का मूर्ति बनाया अपने हाथ से स्वामी जी ने, और बना करके कीर्तन कर रहे हैं रात को 12 बजे तक, और झुकी झोपड़ी वाले से बैठ गए हैं, कीर्तन हो रहा है। एक व्यक्ति गाड़ी से जा रहा है हाईवे से, कीर्तन सुना, सुनकर ठहर गया, झुकी झोपड़ी में जाके देखा, अरे बाबा आज क्या है, तो किसी पर जन्माष्टमी है। अच्छा, हम भारत छोड़ करके कितने युग हो गए आ गया, आज हमने सब संस्कृति छोड़ दिया है, आज पहले बार सुन रहा हूँ कि विदेशों में भी जन्माष्टमी का अनुष्ठान हो रहा है। वहाँ बैठे, फिर अभिषेक हुआ और भोगराग हुआ, प्रसाद बटा है, और दूसरे दिन उनका जन्मदिन था नंदोत्सव। बस दूसरे दिन वो व्यक्ति बोला कि स्वामी जी आप भारत से आए हैं तो ये झुकी झोपड़ी में क्यों, मैं आपको ले चलता हूँ। बस लेके चला, दूसरे दिन कितने उनके अनुयायी जुट गए और वहाँ से प्रचार शुरू हुआ। धीरे 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 प्रभुपाद सच्चिदानंद ठाकुर जी की इच्छा से सर्वत्र, महाप्रभु जी ने कहा था हैं, पृथ्वी ते आतिशत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। बस महाप्रभु का इच्छा, भक्तिम ठाकुर जी का, भक्तिम ठाकुर जी ने लिखा उनके भक्तिम वाणी विभव में, भारतवर्ष में जो अनुशीलन अनुष्ठान होता है धर्मों का, 100 साल लगता है पाश्चात्य देशों में जाने में, और 100 साल पूरा हो गया और पाश्चात्य देशों में प्रचार होगा है, और सब लोग मिलकर के हरि कीर्तन करेंगे, क्या होगा, वर्ल्ड कीर्तन फेस्टिवल, सबसे बड़ा उत्सव होगा कीर्तन का, और कीर्तन रस का ही बांटा जाएगा और उसके द्वारा ही जगत तृप्त होंगे। बस उन्होंने लिख दिया वर्ल्ड कीर्तन फेस्टिवल, बस शुरू कर दिया। तब कुछ लोग अनुजाई हुए, किंतु उनको कुछ आता तो है नहीं, न मृदंग बजाना करताल बजाना, तो मथुरा में महाराज के पास खबर आता, आप मृदंग भेज दीजिए, करताल भेज दीजिए, कुछ पेड़ा भेज दीजिए, कुछ सेवक भेज दीजिए। तो महाराज जी बोले विदेश कोई जाना नहीं चाहता है, तो बोले आप आ जाइए। बोले मैं अपने गुरु सेवा छोड़कर कैसे जाऊँ है, तो करताल मृदंग तो भेज दी, उन लोगों को बजाना नहीं आता, किंतु स्वामी जी महाराज को मृदंग बजाना आता बचपन से, करताल बजाना, कीर्तन करना, हारमोनियम बजाना, कोई किसी चीज़ की कमी तो थी नहीं, सब जानते थे, सब सिखाया, यहाँ तक कि रसोई बनाकर शिष्य को खिलाया और वो भी कैसे बनाना है सिखाया। क्या करते थे हैं, हलवा बना के और चना उबाल करके रख देते, कोई आया तो आटा मल के रख देते, गर्म गर्म पूड़ी सेका और खिलाते थे। लोग जीवन में कभी खाया ही नहीं, विदेशों में क्या खाने वाला है, ब्रेड खाने वाला और नॉनवेज खाने वाले और दारू पीने वाला, उनको क्या जाने कि प्रसाद का क्या स्वाद। और भगवत परिकर यदि ऐसे खिलाए तो बस खुद अपने हाथ से बनाए खिलाते। फिर धीरे धीरे करके कुछ शिष्यों को लेके आए नवद्वीप में, तो आने के बाद में हाँ देवानंद गोलीमठ में उठे, तो उन लोगों ने पूछा महाराज जी अभी तक तो केशव गोस्वामी महाराज मौजूद थे, तो आपने शिष्य कैसे बना लिया हाँ, भाई जब आपका संन्यास गुरु विराजमान है तो वही दीक्षा देते ना, आप प्रचार करते तो क्या होगा, आपने शिष्य क्यों बनाया। तो उन्होंने बोला बाप ने बेटे की शादी कर दी और बोले हैं बच्चे नहीं होना चाहिए हैं, तो शादी क्यों करा, जब शादी कर दिया तो बच्चे भी होंगे, ये कौन सी बड़ी बात है, जब संन्यास दे दिया, सन्यासी दे दिया, प्रचार किया तो शिष्य भी होएगा। फिर सब चुप पड़ गए, कोई नहीं बोले। फिर बोले परम गुरु जी को मैं नवद्वीप में एक आश्रम बनाऊँ बड़ा करके। बोले नहीं बिल्कुल नहीं, नवद्वीप में आश्रम नहीं बनाना है। बोले क्यों, बोले मायापुर में आश्रम बनाना है, नवद्वीप में आश्रम बनाएंगे ना तो मायापुर में प्रभुपाद जी की और मायापुर जोगपीठ की कोई कीमत नहीं रहेगा, सब लोग कहेंगे नवद्वीप सब कुछ है मायापुर नहीं है कुछ, इसे मायापुर में बनाना है। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर मायापुर जाकर के उन्होंने कुछ जमीन ली, वो 1965 की बात है, हम लोग उस समय 12-13 साल उम्र के थे, तो हमने सुना यहाँ पर फ्री प्रसाद मिलता है और पढ़ाई फ्री का होता है और स्वामी जी क्या करते हैं संडे संडे को गीता का क्लास देते हैं, खुले मैदान है, जो लोग गीता का श्लोक बोलेगा उसको इनाम मिलता है हैं। हम तो बच्चे तो लालची होते ही है, स्कूल छोड़ के दल सब वहीं पहुंच जाते, और शाम को हलवा मिलता, गुलाब जामुन मिलता, खिचड़ी मिलता, पूड़ी मिलता, देखो कैसा प्रसाद। और आज जहाँ नया मंदिर बन रहा है वो सब फूल बागान था, और गेट के सामने जहाँ झोपड़ी है फूसों का वहीं स्वामी जी महाराज कुटिया थी, वहीं राधा गोविंद का गौरनीता की सेवा होता था। तो फिर क्या हुआ बच्चे लोग तो बच्चे ही होते हैं, जहाँ भाई आदर प्यार मिले और उसको खाने को मिले वो वहीं भाग जाए, और हम गांव देहात के जंगल के और कभी इतना देखा ही नहीं, इतना प्यार और इतना खाना पीना, बढ़िया बढ़िया चीज़ है। और हमने जीवन में पहले बार इस्कॉन में मंदिर में देखा पालक पनीर बनता है, हमने कभी सुना ही नहीं ये चीज़, और टमाटर का सॉस पत्ता पत्ता गिलास में भर के गरम गरम पीने देते, बाबा क्या है, और कभी देखा ही नहीं। टमाटर बहुत होता है बंगाल में किंतु कोई जानता ही नहीं, और पालक पनीर नाम ही सुना ही नहीं, वह शाही पनीर ओह ये तो बड़ी बात है, और देसी घी का पूड़ी हैं, और उसके साथ में आलू का दम आलू ओहो हैं, खीर क्या क्या चीज़ फेस्टिवल में क्या खिलाते थे। किंतु स्वामी जी के समय ये सब कूपन टूपन और पैसा पैसा इन चीज़ों की कोई मूल्य नहीं था। फिर हम लोग को डराते थे, ये देखो ये विदेशी आया ना तुम लोग पकड़ करके सबको ले जाएंगे विदेश में बेच देंगे, जाना नहीं हुआ, किंतु चूरे छिपे हम लोग भग जाते हैं। किंतु एक मोह हो गया, ममता हो गया था, और न जाए तो मन नहीं लगता है। तो धीरे धीरे करके देखा स्वामी जी तो चल गए विदेश, अब कहाँ जाए, फिर हम गोड़ेमठ जाने लग गए है। किंतु वहाँ इतना वैभव तो था नहीं, गोड़ेमठ में इतना वैभव कहाँ से आएगा, फिर भी प्यार था, आदर था। हाँ, वो लोग कथा सुनाते थे, स्नेह करते थे। तो देखो जहाँ बच्चों को स्नेह मिले ना, प्यार मिले, वो भाग जाए उधर। तो फिर स्वामी जी महाराज जब प्रचार करने के लिए फिर दोबारा गए, आने के बाद हैं मायापुर में मंदिर का कार्य निर्माण शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे करके हैदराबाद में एक व्यक्ति ने 700 एकड़ जमीन दी। फिर उनका इच्छा था कि मैं बॉम्बे में बनाऊंगा, किंतु बॉम्बे में बहुत झंझट पड़ा हैं, फिर भी जय उनकी हुई, बॉम्बे में मंदिर बन गया। धीरे 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 वृंदावन में 75 में मंदिर बना। जब ओपनिंग हुआ हैं, सारे वृंदावन के सारे गोसाई लोग आए, देवालय के सब लोग आए, किंतु उन लोगों ने भाषण दिया, क्या बोला कि आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा देश ब्रज का प्रचार सर्वत्र विश्व भर में गया। बहुत लोगों ने प्रचार किया किंतु उन्होंने अपने को भगवान कहा। स्वामी जी ने प्रचार किया दीनहीन वैष्णव महाभागवत, फिर भी अपने अहंकार नहीं की, उन्होंने सबको सम्मान किया। कैसे सम्मान किया, फलों के टोकरी, मिठाइयाँ, कपड़े सब मंदिर में भर दिया, वो ले भी नहीं जा सकते जितना इतना दे दिया है। तो उन लोगों ने भी बहुत उनकी गुणगान की, राधारमन मंदिर के गौरकृष्ण शास्त्री, बनमलदास शास्त्री, आपके कालीध के आपके रामदास शास्त्री, सब बड़े बड़े आचार्य लोग आए थे हैं, वो देखने लायक। उस समय इस्कन का जो अभी मंदिर बना, 3 प्रकोष्ठ, गौरनिताय, कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर ललिताभिषा का, और सामने पूरा फूल का बागान। ये समाधि तो महाराज जी ने तुलसी और फूल का बागान के बीच में ही दिया, बाद में इन लोगों ने म्यूजियम बनाया, मार्केट फार्केट बन गया, ये तो बाद में बना, किंतु ये सब स्वामी जी टहलते थे और वहाँ पर बैठते थे, पार्क में हरी कथा सुनाते थे हैं। तो आज उनके तिरुभाव तिथि है, तो हम लोग दोपहर को 11 बजे से सारे वृंदावन के ब्राह्मण पंडित वैष्णव जन आएंगे। तो 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, 12 बजे तक वो लोग कार्यक्रम करेंगे। फिर शाम को प्रभुपाद के जितने शिष्य लोग हैं, जैसे वर्तमान में सज्जन महाराज है, भागवत महाराज है, और पद्मनाभ महाराज है, श्रोति महाराज है, सब लोग शाम को आएंगे, क्योंकि मैं दोपहर को बैठ नहीं सकता, मेरे पास इतना सेवा है। तो दोपहर को और पंडित ब्राह्मण लोग आएंगे, उनका आदर सम्मान होना चाहिए, और जैसे गुरुवर्गों की वाणी सब लोग के कानों में पड़े, सबको तृप्ति होए, रस मिले, नहीं तो शुष्कम काष्ठम निरसत उर्वर, जीवन सूखा दरिया में जैसे फुल्गु में पानी नहीं होता है, तो गंगा का पानी कभी शुद्ध बंद नहीं होता, ऐसे ही यमुना का पानी, ऐसे ही भगवत वाणी सदा सर्वदा कानों में के द्वारा हृदय में प्रवेश करना चाहिए, तब आत्मा प्रसन्न रहेंगे, नहीं तो ये आत्मा और किसी से प्रसन्न होने वाला नहीं है तो इन कथाओं को हम लोग फिर शाम को दोपहर को आज सुनते रहेंगे और श्रद्धा पुष्पांजलि समर्पण करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अभी तो परिक्रमा जाना है, सेवा भी बहुत है। गौर प्रमाणे हरि हरि।